सुबह सुबह का आज का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे इस जीवन के विषय के साथ जुड़ा हुआ है और इस विषय पर फोकस करने के लिए हमारे बीच डॉक्टर प्रेम बसंत भाई उपस्थित है। प्रेम बसंत भाई जब लेक्चर देंगे वही उनका परिचय है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय आपका देना चाहती हूँ कि आपने 1979 में एमडी मेडिकल कॉलेज इंदौर से पास करके आप कंसल्टेंट रेडिएशन एंकोलॉजिस्ट के रूप में पिछले 26 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो ब्रह्मा कुमारीज की सिस्टर कंसर्न और बहुत सुंदर हॉस्पिटल माउंट आबू और आबू रोड परिसर में है, वहां पर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पूरे देश विदेश में ईश्वरीय सेवाओं के लिए भ्रमण करते रहते हैं और अलग अलग विषयों पर आप प्रवचन देते। अब तक टोटल 8000 से भी ज्यादा मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन आपने अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल एसोसिएशन, हॉस्पिटल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं, जैसे कि L&T है, टाटा है, विप्रो है, RBI है, इसरो, इंडियन आर्मी, इंडियन रेलवे जैसी अनेक मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्रिपको है, लार्सन एंड टुब्रो, कई कंपनीज में आप समय प्रति समय अपने इस विषय पर फोकस करते हुए अनेकों के जीवन को प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। तनाव जो आज बहुत बड़ी समस्या है, उस तनाव से हम कैसे अपने आप को बचाए और स्टिलनेस की तरफ कैसे अपने आप को ले जाए, इस विषय पर डॉक्टर प्रेम बसंत भाई फोकस करेंगे। ब्रह्मा कुमारी डिंपल बहन से मैं अनुरोध करती हूँ कि गुलदस्ते और बैजिस के द्वारा डॉक्टर प्रेम बसंत भाई का स्वागत करें। हम करतल धोनी से भ्राता जी का अभिवादन करेंगे।
नमस्ते, ओम शांति, आप सभी का स्वागत है। पहले हम एनर्जी पंप करेंगे। आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं और ब्रेकफास्ट से फिजिकल एनर्जी डेफिनेटली आई होगी। अभी हम मेंटल एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि 21st सेंचुरी उसी की है जिसके पास एनर्जी है। अगर एनर्जी है, वाइब्रेशन है, तो मैं जिंदा रहूंगा। अगर एनर्जी और वाइब्रेशन नहीं है तो सर्वाइवल डिफिकल्ट होता जाएगा। तो पहले हम खड़े हो जाते हैं, थोड़ा चार्ज करेंगे। ऑल जॉइंट्स जितने भी हैं, सभी जॉइंट्स को ढीला ढीला रिलैक्स करेंगे। बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, सिंपल करना है। पहले पांव को ढीला करें, बिल्कुल जैसे बिल्ली हो जाती, कैट। कैट क्या होती है? बिल्कुल छोड़ देती है अपने को। धीरे धीरे सॉन्ग सॉन्ग
आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो, थक न तेरा ये तन हो। आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है रे। वाजा रे
आ
थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड। टॉपिक है स्ट्रेस टू स्टिलनेस। अब 21st सेंचुरी एक टोटली डिफरेंट सेंचुरी है, जहां हम सभी देख रहे हैं पिछले एक साल में इतने चेंजेस हुए, इतने हुए, कल भी हुए, कि व्यक्ति घबरा रहा है कि क्या हो रहा है। और सबसे बड़ा स्ट्रेस हो रहा है मैनेजिंग द चेंज। चेंज इतना फास्ट हो रहा है कि उसको समझना, उसको मैनेज करना ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया है। इसीलिए मैंने पहला वर्ड जो टॉपिक का है मूव। मूव का अर्थ है चलते रहिए, रुकिए नहीं। सिचुएशंस आएंगी, प्रॉब्लम आएंगे, पर रुकना नहीं है। हम सभी ने देखा जापान, एक सडन क्राइसिस आया और मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर को कितने जल्दी डिसीजंस लेने पड़े। रेडियो एक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड ना करे, रिएक्टर्स को रोकने के लिए हर मिनट उसको डिसीजन लेना था। और दे वेयर एबल टू गेट सक्सेस, उन्होंने काफी हद तक उस चीज को रोका। और वो पहला पॉइंट आ जाता है पीस की। अब डेफिनेशन क्या है स्टिलनेस की, डेफिनेशन क्या है? पहले हम कहते थे स्टिलनेस मींस आप आराम से बैठ जाइए। अब 21st सेंचुरी में इसका मतलब अलग हो गया है। एक कहानी से शुरू करता हूं। एक राजा है, उसने अपने राज्य के लोगों को कहा, पेंटर्स को कहा, आर्टिस्ट को कहा, मेरे को ऐसा पिक्चर बना के दो जिसमें पीस होए, शांति होए, और उसको बेस्ट प्राइस मिलेगा। सब लोगों ने मेहनत की, अल्टीमेटली दो पिक्चर सिलेक्ट हुए। पहला पिक्चर था, राजा ने जब देखा बिल्कुल पीसफुल था, लेट अस से जैसे दादी हैं, पूरा शांत था। लोगों ने सोचा इस पिक्चर को प्राइज मिल जाएगा, नदी, बादल, बर्ड्स, गार्डन, लोग बड़े शान से रास कर रहे हैं जैसे स्वर्ग का बताते हैं। तो लोगों ने कहा दिस इज द आइडियल पिक्चर फॉर द पीस। पर राजा ने जब दूसरा पिक्चर देखा तो उसमें देखा बहुत बड़ा पहाड़ है, रॉक है, रफ रॉक है, बिजली चमक रही है, पानी तेजी से बह रहा है, हवाएं आ रही है, तूफान है, उस पहाड़ी के बीच में एक छेद है, उस छेद में एक पक्षी अपने बच्चे के साथ, मदर बर्ड सिटिंग वेरी क्वाइटली अंडर दैट होल। राजा ने उसको प्राइज दिया। क्यों दिया अब आप बताएं। पहला पिक्चर आइडियल था, दूसरा टोटल नेगेटिव था, पर उसमें वो मदर बर्ड बच्चे के साथ बड़े शांति से बैठी हुई थी। एंड किंग सिलेक्टेड दैट पिक्चर, दैट दिस इज द बेस्ट फॉर द पीस। क्यों, व्हाट वाज द रीजन? हाँ आप बताएं। अच्छा, और डिफिकल्ट सिचुएशन, इन एडवर्स सिचुएशन। राइट, वेरी राइट। दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पीस स्टिलनेस इज देयर। Peace is not the absence of problem. Peace means conflicts are there. But we have to create alternative solution, creative solution for managing the conflict. इसीलिए एक author ने कहा, life is 10% what actually happened to us. 90% how we react to it. Life में 10% कुछ होता है, पर 90% क्या है? How we react to it. अगर जापान का PM react करता, तो situation खराब हो जाती. But he remain calm, cool, confident, and he act. हमें act करना है, पर react नहीं करना. अगर मैं react करूँगा, तो my body will also release stress hormone in the body. We have two adrenal glands here, adrenal gland है यहाँ, और सबसे ज़्यादा effect stress का, depression का, adrenal पे आता है. And whenever we release stress hormone in the body, without any reason, body damage होना शुरू होती है. आज सबसे बड़ा बीमारियों का कारण हमारे देश में नंबर वन कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD ब्लॉक, सेकंड टाइप 2 डायबिटीज, थर्ड आर्थराइटिस नी प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम स्पॉन्डोलाइटिस एंड बैक प्रॉब्लम एंड कैंसर्स. अब ये चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. CAD वॉज ओनली 1%, नाउ इट इज 18%. और रूरल में भी सेम सिनेरियो आ रहा है. टाइप 2 डायबिटीज इतना कॉमन हो गया कि अगले 5 साल में इंडिया विल बी द कैपिटल, इंडिया राजधानी बन जाएगा. काय में? हार्ट डिजीज और डायबिटीज में. अब तीसरा प्रॉब्लम जो मेजर आ रहा है वर्ल्ड में और हमारे देश में, डिप्रेशन. डिप्रेशन इतना फास्ट आ रहा है कि आज हम देख रहे हैं पीपल विदाउट एनी रीजन गेटिंग डिप्रेस. पहले रीजन होता था, ये हुआ ये हुआ ये हुआ. अब आजकल मैं देख रहा हूं विदाउट एनी रीजन दे आर गेटिंग डिप्रेस. एंड स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कैन डू एनी डैमेज इन द बॉडी. ये बॉटम लाइन है. अगर ये हमारा कंटिन्यूस यहां कंफ्लिक्ट बना रहता है, तो यहां भी कंफ्लिक्ट बना रहता है. दैट इज वाई पीस मीन्स प्रॉब्लम्स आर देयर, आई हैव टू गेट द सोल्यूशन. प्रॉब्लम विल कम एवरी डे. हर दिन कुछ नया प्रॉब्लम आएगा, हर दिन मुझे कुछ नया सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आजकल पहला फैक्टर चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड. स्ट्रेस का दूसरा मेजर कारण हो रहा है प्री ऑक्यूपाइड नेचर. प्री ऑक्यूपाइड नेचर मीन्स बहुत चीजें लेकर हम चल रहे हैं. टू मैनी फाइल्स आर ओपन. ये कर लू, ये कर लू, वो कर लू, ये कर लू. फाइल्स आर ओपन. इतनी फाइल्स ओपन हो गई हैं कि व्यक्ति जब रोड पे जा रहा है, मैं देख रहा हूं आजकल मोबाइल पे बात कर रहा है, पीछे से हॉर्न बजा रहे हैं, हट ही नहीं रहा. बचाना है तो तुम मुझे बचाओ. इतना प्री ऑक्यूपाइड हो गया है और इसी के कारण व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है. एंड दैट इज वेयर वी हैव टू गेट द सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम होते हुए सॉल्यूशन निकालना है. डॉक्टर हैंसले वाज द फादर ऑफ वर्ल्ड स्ट्रेस. एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, सर मेरे जीवन में इसी मेथड बता दो कि कोई प्रॉब्लम ना आए. डॉक्टर हैंसले ने कहा अगले दिन आना. अगले दिन डॉक्टर हैंसले उसको शमशान में ले गए, ग्रेवयार्ड में ले गए. बोला यहां सो जा, यहां प्रॉब्लम नहीं आएगा. वहां रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा. दैट इज वाई ओनली 1% डोंट गेट प्रॉब्लम डेड बॉडी. बाकी सब जो अलाइव हैं, जिंदा हैं, तो प्रॉब्लम आएगा ही. इसीलिए पहली चीज मैं ये कहता हूं, जिंदा हो कि मरे हुए हो, जिंदा है तो हम प्रॉब्लम तो आएगा. तो अपन एक और करते हैं एक्सरसाइज बैठे बैठे. हाथ ऊपर करिए और अपने को कहिए, मैं जिंदा हूं, आई एम अलाइव, आई एम एक्टिव, आई एम गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड. दुनिया मेरे को असर नहीं डालेगी, मैं दुनिया पे असर डालूंगा. हाँ, अब मजा आया, अब चलते हैं आगे. अब एक बहुत डीप थ्योरी थी जिससे मैंने काफी सीखा. मैं वही बताऊंगा जिससे मैंने सीखा, क्योंकि ये टॉपिक 3 डेज 4 डेज सेमिनार के हैं. एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने, रियल स्टोरी, काफिया करके ऑस्ट्रियन फिलोसोफर था, ऑस्ट्रिया का, उसने अपनी किताब में एक चीज लिखी. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, अपनी कमरे में बैठ जाओ. कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ. कुर्सी पर भी मत बैठो. लिसन टू योर सेल्फ, अपने को सुनो. अपने को भी मत सुनो, साइलेंटली बैठ जाओ, साइलेंटली बैठ जाओ. जैसे ही साइलेंट में बैठोगे, सब कुछ आपके पास आ जाएगा. मैंने सोचा ऐसे कैसे होगा, साइलेंट में बैठ जाए और सब कुछ आ जाएगा. सोचा पहले के ऋषि मुनि जंगल में बैठ जाते थे. बुद्धा बैठ गया, महावीर बैठ गया, कटऑफ कर लिया, 14 साल बैठ गया. सब लोग उनके पास आके मिलने लगे, राजा भी आके झुकने लगा. क्या सीक्रेट था? जो वाइब्रेशन, जो ऑरा, जो लाइट, जो वायु जा रहे थे, वो लोगों को चार्ज कर रहे थे. और जैसे ही लोग चार्ज होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं. और सबसे सेकंड वर्ड है आज 21st सेंचुरी का, कनेक्टिविटी. आज हर कोई कनेक्टेड है. हमने देखा, एक व्यक्ति ने स्टार्ट किया दिल्ली में, हजारों लोग कनेक्ट हो गए. कनेक्टिविटी इज द की वर्ड फॉर द लीडरशिप. अगर लीडर बनना है, अच्छा लीडर, पॉजिटिव लीडर बनना है, तो केवल कनेक्टेड रहो. कनेक्टिविटी मीन्स जहां जाऊं, जिससे मिलूं, उसको कुछ दूं. सड़क पे जा रहा हूं, घर जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, वॉक कर रहा हूं, जो मुझे देखे उसको कुछ दूं. क्या दूं? हेलो, बाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ये तो ठीक है. अब लेटेस्ट क्या दूं? गुड विशेस दूं, शुभ भावना, शुभ कामना देते जाऊं. जैसे ही न्यूज आई किसी की, 1 मिनट उसको शुभ भावना दे दी, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, मेरा काम है उसको देना. उससे क्या होगा, मेरी कनेक्टिविटी बनी रहेगी. और जितनी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, यू कैन बिकम ए लीडर. इसीलिए आजकल नया शब्द यूज हो रहा है मैनेजमेंट में, MBWA, MBWA. MBWA का मतलब है मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड. मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, यानी आप लीडर हो, वॉक करो, ऑर्गेनाइजेशन में वॉक करो। वॉक करते करते आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, वेपन है, लिसनिंग। अगर आप फैमिली के मुखिया हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, पहला कैरेक्टर चाहिए लिसन टू पीपल। जो सुनता है वो कनेक्टेड होता है और वो मैच जीतता है। स्ट्रेस 90% सॉल्व हो जाती है बाय लिसनिंग। लिसन कैसे करें? लेफ्ट ईयर से लिसन करें। जब कभी किसी को सुनना है, लेफ्ट ईयर से लिसन करो, और जब लिसन करना है डायरेक्ट करो, क्योंकि ये इधर है नहीं तो मैं नीचे आता। डायरेक्ट वन टू वन लिसन करो, कभी टेबल के इधर बैठकर लिसन नहीं करो। अगर मैं हूं, यहां बैठा हूं, बच्चा आ रहा है, वर्कर आ रहा है, वो यहां बैठा है और मैं उसकी सुन रहा हूं, दैट इज आउटडेटेड। बीच में क्या है? टेबल है। टेबल क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। न्यू मैनेजमेंट में क्या? यू लिसन डायरेक्टली टू पीपल, गो टू पीपल, लिसन टू देम, स्ट्रेस विल बी रिड्यूस। तो साइलेंट बैठना यानी जब मौका मिले अपने अंदर के कंप्यूटर को चार्ज करना। हमारा सॉफ्टवेयर अंदर डला हुआ है, हम सबको प्रोग्रामिंग करके यहां भेजा हुआ है, हम सबको प्रीपेड चार्ज किया हुआ है। अब उस प्रीपेड को जल्दी खत्म कर दें या धीरे धीरे खत्म करें या रोज चार्ज करें, वो हमारे ऊपर है। जब टाइम मिले अपने सॉफ्टवेयर को चार्ज करें। मेरा सॉफ्टवेयर क्या है? TEAM। टीम का अर्थ है थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज। थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड, मेमोरी, ये मेरा सॉफ्टवेयर है। अगर मेरा सॉफ्टवेयर ठीक है तो हार्डवेयर भी ठीक होगा। हाँ, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरी, विचार, दृष्टिकोण, इमोशन, भावनाएं और मेमोरी, याद। ये चार चीजें हरेक के अंदर होती है। जब मैं घर जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, ये टीम को लेके जा रहा हूं, दूसरे व्यक्ति के अंदर भी वो टीम है। अगर टीम का इंटरेक्शन अच्छा होगा तो स्ट्रेस नहीं होगा। अगर मैं घर से चला हूं, मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, घर में झगड़ा हुआ, ऑफिस आया, तो क्या होगा? ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, एकदम रिएक्ट करूंगा, क्योंकि मेरी मेमोरी नेगेटिव थी घर से चलने से। इसीलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं वेस्टर्न मॉडल में मंडे मॉर्निंग को। सोमवार को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं और सोमवार को सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2 किलोमीटर घर के और ऑफिस के रेंज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? जैसे ही घर पहुंच रहा है, मेमोरी खुली, प्रॉब्लम, झगड़ा। ऑफिस पहुंच रहा हूं, बॉस से झगड़ा या किसी के साथ प्रॉब्लम, मेमोरी खुली। संडे एंजॉय करके जा रहा हूं, मंडे की फाइल खुल गई, आज फिर से वही काम पे जाना है, वही व्यक्ति मिलेगा। और जैसे ही इमोशनल कंफ्लिक्ट हुआ, व्हील डिस्टर्ब हुआ, एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट 1 सेकंड का होता है। मैं अभी आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। दिल्ली में 2 महीने पहले 2 अच्छे व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, कार पार्क कर रहे हैं पार्किंग लॉट में। एक ने दूसरे से झगड़ा किया, दूसरे ने उसको कार से नीचे खींचा और उसने कार चला दी, एक की डेथ हो गई और एक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब आप देखो, दो व्यक्ति सुबह का समय, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, एक मिनट में दोनों गए। कहां गड़बड़ थी, कहां मिस्टेक हो गई? दोनों पढ़े लिखे, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक सेकंड की मिस्टेक से दो की जिंदगी खत्म हो गई 35-40 साल के। क्या हुआ? टीम खुली, उसकी भी खुली, ईगो, ईगो ओपन हुआ, मैं कुछ कम नहीं हूं, ईगो क्लैश हुआ और एक्सीडेंट हुआ। अगर उस समय एक सोच लेता, उसको पार करने दो, मैं कहीं और कर लेता हूं, तो दोनों की जिंदगी बच गई होती। पर दोनों ने ईगो पे रिएक्ट किया तो प्रॉब्लम आया। और व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन यही है, साइलेंट में क्यों नहीं बैठ सकता, साइलेंट में क्यों नहीं बैठ सकता, ये बंद करना, ये बंद, साइलेंट में क्यों नहीं बैठ सकता। काफिया ने यही कहा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम व्यक्ति का यही है कि शांत नहीं बैठ सकता। आजकल मोबाइल के कारण मैं देख रहा हूं एक प्रॉब्लम और बढ़ गया, जहां देखो वो, ट्रेन में भी, मंदिर में भी भगवान के दर्शन कर रहा, 5 जगह मोबाइल का यूज ना करना। एक, जब एक्सरसाइज कर रहे हो, अपनी एक्सरसाइज अच्छी करो, हम सब इंडियंस के लिए कंपलसरी है 35 मिनट का वॉक, कंपलसरी है, बचना है तो डायबिटीज और हार्ट डिजीज से। दूसरा, खाना खाते समय साइलेंट पे रख दो, मोबाइल को भी तो कुछ शांति चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, साइलेंट मोड। साइलेंट मोड यानी मोबाइल भी कहता मुझे भी शांति चाहिए, थोड़ा उसको शांति दे दो। और खाने को एंजॉय करो, सबसे अच्छी गिफ्ट भगवान देता है, हमें खाना दिया है, खाने को ही एंजॉय नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या कर रहा हूं। आजकल लोगों से पूछता हूं, सर क्या कर रहे हो? खाना निपटा रहा हूं। खाना निपटा नहीं रहा हूं, बीमारी पैदा कर रहा हूं। जितना जल्दी खाऊंगा उतना यहां कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी। जितना आराम से खाऊंगा उतना खाना यहां डाइजेस्ट होगा। तीसरा, जब नहा रहे हो तब मोबाइल रख दो, अच्छी तरह नहाओ। लोग आजकल मोबाइल बाथरूम में भी ले जा रहे हैं, इतने बिजी हो गए हैं, इसीलिए ज्यादा हार्ट अटैक आजकल बाथरूम में भी आने लगे। चौथा, जब गाड़ी चला रहे हो मोबाइल साइड में रखकर गाड़ी रोक कर बात करो, नहीं तो अब ये हैबिट हो गई है यंगस्टर्स की, तो मैंने देखा यंग लड़कियां आजकल फैशन हो गया है, अगर ऐसा नहीं करूं तो मैं कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हूं। मुझे वॉरेन बफेट का बड़ा अच्छा लगता है, कहता आई डोंट हैव मोबाइल, मैं बिना मोबाइल के चलता हूं, और वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। पांचवा, जब भगवान को प्रार्थना करो तब मोबाइल रख दो, हो सकता है भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले और कह ले तेरे को मैं देता हूं 1 करोड़ रुपया। उसी समय मोबाइल बज गया तो भगवान क्या करेगा, चल आगे चल, नेक्स्ट को मिल जाएगा। इसीलिए 5 जगह नहीं करना। फिर से चार्ज करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करें, ताली इधर, 1 2 1 2 1 2 1 2, गुड। तो अपनी सीट पर सेट रहिए। पहला लेसन आपने क्या सीखा यहां पर बहनों से, पहला लेसन क्या था बहनों ने सिखाया होगा, कल हुआ होगा शायद या आज, क्या था पहला लेसन बताइए, देखें किसको याद है। और अच्छा बताइए उसमें। सोल तो सबको पता है कि आई एम सोल, उसका एप्लीकेशन क्या है? अप्लाई द नॉलेज, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन डजंट मीन सिटिंग आइडियली, मेडिटेशन मीन्स एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एवरी डे। जो सुना उसको अप्लाई करूं, थोड़ा सुना उतना ही अप्लाई करूं, एक सेंटेंस सुना उसी को ही अप्लाई करूं, बाकी छोड़ दो। जो समझ में आए उसको अप्लाई करो, जो समझ में नहीं आए छोड़ दो। वो आपका हथियार बन जाएगा, वेपन बन जाएगा। पहला लेसन था अपनी सीट पर सेट रहो। अपसेट इंग्लिश शब्द है। अपसेट का अर्थ क्या है? अपसेट का अर्थ क्या हुआ? मैं सेट नहीं हूं, मैं अपनी सीट पर सेट नहीं हूं, बार बार उठ रहा हूं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर बार बार उठा तो? बार बार उठा तो क्या होगा? पीछे वाले कहेंगे बैठ जाओ। इसी तरीके से जो मेरी सीट यहां है, उस सीट पर सेट होना ही मेडिटेशन है। और मेरी सीट क्या है? आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, ये मेरी सीट है। हिंदी शब्द है स्वमान, स्व मान। स्व को जितना मैं मान देता हूं, वैल्यू देता हूं, उतना अभिमान नहीं होगा। अभिमान यानी अभी अभिमान मिलना चाहिए। अभिमान का अर्थ क्या? मैंने ये किया, मैंने ये किया, अभी अभी मुझे लोग मान दें। इसीलिए ईगो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसकी जगह क्या करें? और हरेक को चाहिए मान, तो उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, फिर से राइट हैंड लीजिए और पीठ थपथपा दो। आह ब्यूटीफुल। कोई आपको अप्रिशिएट करे या ना करे, मैं तो कर सकता हूं। 3 बार दिन में करिए, मैं गारंटी देता हूं आपको स्पॉन्डोलाइटिस नहीं होगा, अगर आप 3 बार करेंगे तो। स्पॉन्डोलाइटिस क्यों होता है? मेरे को अभी अभी मान मिलना चाहिए, मैंने ये किया, मैं हूं हूं, तो ये गर्दन अकड़ जाती है। मैं कुछ नहीं हूं। जैन मास्टर का एक बहुत अच्छा शब्द था जिससे मैंने सीखा। जैन मास्टर ने कहा, बी सिंपल, बी ऑर्डिनरी, बी सिंपल, बी ऑर्डिनरी। मैं सिंपल ऑर्डिनरी, तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जब व्यक्ति ईगो में आकर ऊपर उठना चाहता है, तभी प्रॉब्लम होता है। तो अपसेट का अर्थ है मैं अपनी सीट पर बार बार बैठूं, और तभी बोलूं जब मेरे शब्द साइलेंस से अच्छे हैं, तभी बोलूं जब वो वर्ड्स साइलेंस से अच्छे हैं, नहीं तो नहीं बोलूं। इंडिया में कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देना जब तक वो खुद नहीं पूछे। जब पूछे तो दो, नहीं पूछे आराम से एंजॉय। मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूं ट्रेन में, बैठ गए मस्ती से डिटैच, किसी को नहीं पता कौन क्या। अब जैसे ही मैं बोलूं मैं डॉक्टर हूं, तो क्या होगा? अरे सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मेरी पूरी जर्नी क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कुछ नहीं, सिंपल एंड ऑर्डिनरी, सिंपल एंड ऑर्डिनरी रहूंगा तो वो स्ट्रेस जो है वो तंग नहीं करेगा। जब कभी भी कोई बात आपको सुनाने आए, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव एनर्जी ड्रेन होती है जब हम नेगेटिव सुनते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, और वो और अच्छा लगता है जब कोई किसी की बात बोलता है, वो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है, तो बड़ा मजा आता है। सोक्रेट्स ने कहा, जब कभी कोई आपके बारे में, कोई किसी के बारे में बोलने आए, 3 चीजें यूज करो। सोक्रेट के पास एक व्यक्ति आया, बोला आपके बारे में एक व्यक्ति ये कह रहा था, तो सोक्रेट ने कहा क्या वो ट्रूथफुल बोल रहा था? उसने कहा मालूम नहीं, सच्चा बोल रहा था कि नहीं। फिर सोक्रेट ने कहा वो अच्छी चीज है? बोला नहीं खराब चीज है। फिर सोक्रेट ने कहा वो काम की चीज है, बोला नहीं काम की चीज नहीं है। तो सोक्रेट ने कहा जब सच्चा नहीं है, अच्छी चीज नहीं है, काम की चीज नहीं है, तो तू क्यों मुझे सुना रहा है। एनर्जी ड्रेन तभी होती है जब हम ज्यादा अनवांटेड एरियाज को खोलकर सुनते हैं। इसीलिए सिखाया जाता है लर्न टू से नो टू स्मॉल थिंग्स, देन यू से यस टू बिग थिंग्स। अनवांटेड एरियाज में घुसो ही नहीं। मैं भी यही करता हूं, वही एरिया को किल करता हूं, हिट मारता हूं जहां मेरी जरूरत है, जहां जरूरत नहीं है रिलैक्स, ब्रेक लगाया, बैठ गए, सीट पर सेट हो गए और लिखना चालू किया। तीसरा, हम सब ह्यूमन बींग हैं। ये बंद कर, ये फोकस देख, ह्यूमन बींग है, हमारे दो साइड है, ह्यूमन एंड बींग। इसको उल्टा करें, बींग ह्यूमन। ह्यूमन बींग का अर्थ है कि मैं मशीन भी हूं, एनर्जी भी हूं। इसको अगर उल्टा कर दें तो मैं क्या हो जाऊंगा, एनर्जी के साथ मशीन हूं। अगर इससे ही गेम खेलूंगा तो मेरे में बीमारी आएगी। ये वाला गेम क्या है, टाइटल, रोल, पोजीशन, उससे ही ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहला काम, ये मेरा कार्ड है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये हूं। वो ये नहीं बताता वो उसका नाम क्या है, पर पहले ये बताएगा मैं ये हूं। अब वो तो आए हैं चला जाएगा, पर वो जो मैं हूं वो तो रहूंगा ही। इसीलिए पहला शब्द है बींग ह्यूमन होंगे तब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। डिजीज का अर्थ क्या है, डिस ईस, डिस ईस। डिजीज का अर्थ क्या हुआ, जब मेरे में ईज नहीं है तो डिस ईज हो गया। आयुर्वेदा में कहावत है पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो हेल्थ अच्छी। अब क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, पांव हो गए हैं ठंडे, पेट हो गया है टाइट, सिर हो गया है गरम। इसीलिए आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है। जितना हम इसको रिवर्स करेंगे तब हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल है, स्ट्रेस खराब नहीं है। खराब क्या है, उसको कैसे हम हैंडल करते हैं। स्ट्रेस का मेन रीजन है, जहां से प्रॉब्लम चालू होता है, मैं क्या हूं और मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट आई एम एंड व्हाट आई प्रटेंड टू व्हाट आई एम। मैं क्या हूं और मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इन दो के बीच में ही प्रॉब्लम चालू होता है। मेरे को एक लेडी याद आती है, 40 ईयर ओल्ड, एक साल पहले डिप्रेशन में थी। डिप्रेशन में कब होती थी, जब 8 से 10 बजे सीरियल देखती थी तब डिप्रेशन में जाती थी, रात को 8 से 10 के बीच में। मैंने सोचा उस समय क्या होता है, उसके साथ गया घर पे तो 8 बजे वो सीरियल ऑन करती है और सीरियल देखते देखते डिप्रेशन में चली जाती है। सीरियल में क्या था, बहुत अच्छे मकान, कार, ड्रेसेस, फर्नीचर, तो ये लेडी सोचती थी मेरे पास तो है ही नहीं, तो डिप्रेशन में चली जाती थी। खुद की आइडेंटिटी को लूज करना ही स्ट्रेस है। इसीलिए कहा मैं क्या हूं और मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं जहां से प्रॉब्लम चालू होते हैं। पहला है, हम सब हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं पर कंट्रोल नहीं होता। ये हमारा पोस्चर है, हर चीज को कंट्रोल करूं। ऑल अनहैप्पीनेस अराइज इन ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, और इसके कारण बीमारी पैदा होती है। ये इपिसीटस ने कहा था, ग्रीक फिलोसोफर। अब इसका आंसर क्या है, लक्ष्मी को कैसे दिखाया है, लक्ष्मी को कैसे दिखाया है, लक्ष्मी को ऐसे दिखाया, क्यों दिखाया ऐसा? पैसा आ रहा है जा रहा है, करेंसी आ रही है जा रही है, हम क्या करते हैं लक्ष्मी को? सर क्या कर रहे हो? डिपॉजिट कर रहा हूं। तो माइंड बॉडी को क्या कहता है? तू भी डिपॉजिट कर, ये कर रहा है तो तू भी कर। तो जीन्स क्या करते हैं? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के कोरोनरी में डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हार्ट डिजीज नंबर वन किलर है। क्या करना है, इसका अर्थ क्या हुआ? रिसीविंग एंड गिविंग, एनर्जी को फ्लो करने दो, एंजॉय द फ्लो। फ्लो को हम एंजॉय नहीं करते, बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा, तो हम क्या करते हैं? पोस्टपोन करते जाते हैं खुशी को। पोस्टपोन करते करते जब हमारी हालत ये हो जाती है 70 साल की, कई चीजें आ जाती है। इसीलिए कभी पोस्टपोन नहीं करना, हर दिन खुशी का दिन है। आज कितना अच्छा दिन है, आज क्या है, आज क्या है, संडे है। आज का दिन क्या दिया है भगवान ने? मुझे गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया आज भगवान ने? आप लोगों से मिलने के लिए मुझे मौका दिया, तो कितना अच्छा मेरे लिए गिफ्ट हो गई। एवरी डे इज ए गिफ्ट, गिफ्ट को एंजॉय करिए। इसीलिए कहते हैं उपहार। उपहार का अर्थ क्या है? उप ऊपर वाला, हार। अगर ऊपर वाले से हार मानना सीख लिया तो हर दिन वो उपहार देगा। ऊपर वाले से झगड़ा किया तो वो उपहार नहीं देता है। जब वो बोले मैं कर रहा हूं, हां तू कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो वो रोज मुझे नई गिफ्ट देगा। और रोज गिफ्ट को एंजॉय करिए। मुझे एक बहुत अच्छा याद आता है, एक लेडी थी, घर में खाना बना रही थी और टेबल को बड़ा अच्छा सजाया हुआ था, जैसे कोई मेहमान आने वाले, बड़ा अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। उसकी फ्रेंड आई, पड़ोसी, उससे पूछती है आज कोई मेहमान आने वाला है, इतना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, परफ्यूम किया हुआ है, फ्लावर सेट है। बोला कोई मेहमान नहीं आ रहे हैं, मेरे पति और बच्चे आएंगे। बोले उनके लिए नई क्रॉकरी, नए बर्तन सब क्यों रखे हैं? बोले वो मेरे मेहमान से कम थोड़ी हैं, उनको रोज वो आएंगे, रोज मैं उनको नया दूंगी, तभी तो वो एंजॉय करेंगे। हम क्या करते हैं? क्रॉकरी ये सब रख देते हैं, पुरानी चीजों से खाना खिलाते हैं, जब मेहमान आते तब निकालते हैं। यानी मैं मेहमान से कम हूं। रोज उसको एंजॉय करिए, रोज नई डिशेस दीजिए, तब तो वो कितना अच्छा लगता है टेबल सजी हुई हो। मेरे को भी खाने में तब मजा आता है जब टेबल पे सब पड़ा हो, कितना अच्छा लगता है। अब ऐसे ही कोई रख दे, खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो हर दिन एक गिफ्ट है, प्रेजेंट है, उसको एंजॉय करें, उसको टाले नहीं। एक बार एक व्यक्ति मिला, सब कुछ है फिर भी दुखी है। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है मैं बच्चे के बच्चे के बच्चे के बारे में सोच रहा हूं क्या होगा। हम लोग इतना आगे चले जाते हैं। मुझे वो कहानी याद आई राजा की। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था फिर भी दुखी रहता था। उसका बाहर चौकीदार था, वो बड़ा खुश रहता था, गाना गाता था, हंसता था। तो राजा को लगा है मेरे पास सब कुछ है, मैं दुखी हूं, इसके पास कुछ नहीं है, ये सुखी है। उसने अपने एडवाइजर को बुलाया। एडवाइजर ने कहा सर उसने 99 का क्लब ज्वाइन नहीं किया इसलिए सुखी है। तो राजा ने कहा क्या होता है 99 का क्लब? बोला कल बताऊंगा। तो मंत्री ने 99 गोल्ड कॉइन्स लिए और उस चौकीदार के घर के बाहर रख दिया। चौकीदार जब घर आता है, देखता है बैग पड़ा हुआ है, 99 गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए हैं। चौकीदार अंदर ले जाता है, गिनता है 99, सोचता है 99 किसने रख दिए सोने के सिक्के। फिर बाहर जाता है, देखता है एक सिक्का कहीं गिर तो नहीं गया, देखा नहीं है, फिर से गिनता है 99। फिर उस दिन से वो चालू हो जाता है कि अब लाइफ में मुझे एक गोल्ड कॉइन और लेना है, इसको 100 बनाना है। अगले दिन जब आया राजा के पास तो न गा रहा था न हंस रहा था, बड़ा मायूस सा बैठा था। राजा ने एडवाइजर को बुलाया, क्या हो गया इसको? एडवाइजर ने कहा, सर ही हैज जॉइन ऑफिशियली 99 क्लब। यही हमारी होती है, हम अनवांटेड डिमांड जब क्रिएट करते हैं माइंड पे और वो फुलफिल नहीं होती तो स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस इज ए मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेस नहीं है तो स्ट्रेस होगा ही, और हमें उसको ठीक करना ही पड़ता है। या तो रिसोर्सेस को ठीक से मैनेज करें या डिमांड को, अनवांटेड डिमांड को कम करें। अब जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी कि जब कभी भी प्रॉब्लम आए, मेरे से सॉल्व नहीं हो तो भगवान को दे दो। प्रॉब्लम दे दिया, अब तू सॉल्व कर। भगवान का मेन मेथड क्या है? गॉड का मेन मेथड क्या है? ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है। इसको कहते हैं डिटैच ऑब्जर्वर। डिटैच ऑब्जर्वर का अर्थ है प्रॉब्लम को लेकर सोचो नहीं, पहले डिटैच हो जाओ और फिर सोचो इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन समझ में आए तो करो, नहीं तो उस परमात्मा को दे दो, उसको सॉल्व करने दो। इसको ही कहते हैं नॉन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल का अर्थ है टेंशन का एक मेन रीजन हमारी सोसाइटी में है, हम एक दूसरे को जज करते हैं। हर कोई दूसरे को जज करता है, फादर बच्चे को, वो उसको वो उसको, तो हरेक के एक्सपेक्टेशन इतने बढ़ गए हैं कि वो ओवर एक्सपेक्टेशन के कारण स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एक लड़की का याद आया, मेडिकल कॉलेज में सेकंड प्रोफ तक टॉप पे थी, वन रैंक नंबर वन। थर्ड प्रोफ में फाइनल में सेकंड रैंक आया, उसने सुसाइड कर लिया। क्या लिखा उसने अपने नोट में? कि मेरे फादर ने कभी नहीं सिखाया कि तू सेकंड भी आ सकती है। क्या हुआ? ओवर एक्सपेक्टेशन जब हम अपने को बच्चों को करते हैं तो उनके अंदर फियर पैदा होता है। इसीलिए कभी भी वो एक्सपेक्टेशन, अर्चना बहन कभी भी वो एक्सपेक्टेशन ज्यादा क्रिएट ना करें। डिटैच होकर, साक्षी होकर मैच को देखें। साक्षी का अर्थ है नॉन जजमेंटल। अर्चना बहन म्यूजिक टीचर है, बच्चों के लिए एग्जाम के समय एक बहुत, जब 12th के बच्चे आते हैं तो उनको पहले बिठाते हैं, एग्जाम के पहले उनको वो गाना सुनाते हैं। क्या गाना सुनाते हैं सुनेंगे, अपन भी ताली बजाएंगे। हाँ सुनाइए।
हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। मंजिल को पा जाओगे साथ अगर भगवान है। हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। घबराओ ना प्यारे भाई,
कर लो सारी आज पढ़ाई, काम तुम्हारा पढ़ना है, इसमें फिर क्या डरना है। अपने भाग्य की रेखा तुम्हें अपने हाथों लिखना है, अपने भाग्य की रेखा तुम्हें अपने हाथों लिखना है। हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है, जीवन को निर्मल बनाना, सबके प्यारे बन के दिखाना, जीवन को निर्मल बनाना, सबके प्यारे बन के दिखाना, खुशियों से भर करके झोली, खुशियाँ सबको खूब लुटाना। बड़ा अमूल्य धन है जीवन, व्यर्थ नहीं इसको गवाना, बड़ा अमूल्य धन है जीवन, व्यर्थ नहीं इसको गवाना। हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है, हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। मंजिल को पा जाओगे साथ अगर भगवान है, हिम्मत ना हारो कभी जब तक तन में जान है। ओम शांति।
मेरे को याद आया, अर्चना बहन जब गा रही थी, जब साथ में है तो ऑटोमेटिक हिम्मत आ जाती है। मुझे एक याद आया, एक ह्यूमर लेटरल थिंकिंग के, उससे मैंने बता रहा हूं, एक्चुअल क्या था मुझे नहीं मालूम, बाकी ये सोच जो माइंड काम कर रहा है। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया। कंडीशन ये थी कि रावण के सभी लोग उसको हिलाने की कोशिश करेंगे, अगर पांव हिल गया तो सीता मां को खो देंगे। उसने अपना पांव रख दिया, अंगद ने, सबने हिलाने की कोशिश की, उसका पांव हिला नहीं। जब वापस आया अंगद अपने दोस्तों के पास, उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद, जब तूने पांव रखा था तो बहुत स्ट्रेस हो गया था, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मां को तो खो दिया था। अंगद ने बड़ा काम कूलली जवाब दिया, मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले, टेंशन राम का था, सीता राम की थी। तो हमारा भी काम क्या है, एक कदम रखना। एक कदम रखने में ही मैच हारते हैं या जीतते हैं। मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम आते हैं बच्चों के, साइकोथेरेपी में हम कुछ नहीं करते, उनका प्रॉब्लम क्या होता है, सर करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये करूं कि ये करूं। जो करना है कर, सब ठीक हो जाएगा। पर अंदर अपना विल पावर पॉजिटिव रख, तो खुद ही वो हो जाएगा। जो तेरा सोच है अगर वो पॉजिटिव है, पावरफुल है, पर्पसफुल है, तो वो काम होएगा ही होगा। हम वही हैं जैसा हम सोच रहे हैं, मैं वही हूं जैसा मैं सोच रहा हूं, मेरे साथ वही हो रहा है जो मेरे विचार चल रहे हैं। You are what you think. You can if you think you can. हम सब कुछ कर सकते हैं अगर मैंने सोच लिया मुझे करना है। पर इसी में ही मैच होता है। क्यों हुआ बच्चे को वो प्रॉब्लम? बचपन से ही उसको माता पिता ने ये कर वो कर, ऐसा मत कर, ये मत करना, वो मत करना, ये करना, तो बच्चे की हालत क्या हो गई? मैं ठीक नहीं हूं। सबसे बड़ा नेगेटिव शब्द कौन सा है? सबसे बड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है एक व्यक्ति खुद को देता है, मैं ठीक नहीं हूं, आई एम नॉट गुड, मैं नहीं कर सकता बेटा, कर, नहीं नहीं मैं कर, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, नहीं कर। अब पूरी साइकोथेरेपी क्या है, कर, तू कर सकता है। मेरे फोन पे क्या काउंसलिंग करता हूं, बस यही, आज एग्जाम है, वाइब्रेशन देना, हां बिल्कुल हो जाएगा। केवल ये बोलना ही वाइब्रेशन क्रिएट करता है। कभी भी कोई आए आपके पास, बच्चा आए, जिस दिन एग्जाम देने जाए उस दिन उसको कुछ मत बोलो, उस दिन उसको बोलो प्यार से, आई लव यू एज यू आर, मैं तुझे प्यार करता हूं तेरे को, ना कि एग्जाम को। हम क्या करते हैं, उसको बार्गेनिंग सिखाते हैं। बार्गेनिंग कहां से चालू होता है, बचपन से। ये कर तो साइकिल दूंगा, ये कर तो मोटर बाइक दूंगा, 100% ला तो ये दूंगा। तो बच्चे में क्या चला गया, फीडिंग हो गया। अब बड़ा होके वो ऑफिसर बनता है, कोई उससे काम कराने जाता है, ये कर दो, नहीं नहीं होगा, अच्छा ये ले लो कर दो, हाँ हो जाएगा। किसने सिखाया था बार्गेनिंग, किसने सिखाया था, हमने ही सिखाया था। इसीलिए कभी भी बार्गेनिंग मत सिखाओ, उसको प्यार करो एज ही इज, आई लव यू एज यू आर। जब उस दिन एग्जाम देने जाए, बच्चे को पीठ पर गले लगाकर उसको एनर्जी दो। ये दो एरिया हमारे एनर्जी के हैं, ये पूरा बैक हमारा एनर्जी सेंटर है, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। तीनों बैक के प्रॉब्लम क्यों आते हैं, अपर बैक में प्रॉब्लम आएगा अगर गर्दन अकड़ रही है, अपर बैक पेन है, यानी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति स्टिफ है, उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्या करना चाहिए, उसको ठीक करना है, दवाई कुछ काम नहीं करती, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, मैं हूं। जब टाइम मिले उसको सपोर्ट करो, वाइफ हो, बच्चा हो, वर्कर हो, उसको सपोर्ट करो। मिडिल में क्यों प्रॉब्लम आता है, जब कभी हमारे में कोई हीनता होती है, गिल्ट ऑफ द पास्ट, मेमोरी अच्छी नहीं है, पुरानी चीजें याद आ रही है, मैंने ये किया था, तो बैक में पेन होगा। लोअर, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इनसिक्योरिटी है। इसीलिए तीनों को ठीक करना है, तो रोज अपने को बोलो, हाँ आप भी बोलिए, खड़े हो जाएं, आ जाइए अर्चना बहन, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, I am what I am, I am beautiful, I love myself। अब एक दूसरे को हाथ मिलाइए, जो भी पास में खड़े हैं, हाँ मिलाइए, सपोर्ट करिए, आई एम विथ यू, आई लव यू। पहला प्यार खुद से करिए, सबसे पहला प्यार किससे करना, खुद से। इल का अर्थ क्या है, आई एल एल, इल का अर्थ क्या हुआ, आई लैक लव। आदमी को जब प्यार नहीं होता है तभी तो डर पैदा होता है, प्यार है तो जिंदगी है, डर है तो भागता रहता है। हाँ, जिसकी रचना है तो नहीं सुनती, हाँ गाएंगे, आप भी गाना, अब खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है।
तुझे देख कर जग वाले पल, तुझे देख कर जग वाले पल, यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा, हो जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर आंगन तरसा करता है। अंग अंग तेरा रस की गंगा, हो 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 हो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। हो
खड़े ही रहे, क्योंकि मुझे बोला था शांतनु भाई ने कि सोने नहीं देना, तो मैं इसीलिए आपको सोने नहीं दूंगा। खड़े रहें। अब फिर से एक और एक डीप लव पैदा करना, प्यार। प्यार ही जिंदगी है। लाइफ क्या है? एल आई एफ ई। लाइफ का अर्थ क्या हुआ? इन्फिनेट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड लव। लव है तो यूनियन है, लव नहीं है तो फियर है, और फियर है तो हम डरते ही रहते हैं हमेशा। डर को ही ठीक करना है, और डर को ठीक करना है तो खुद में कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम अपने लिए और उस परमात्मा के लिए प्यार पैदा करेंगे। हाँ, जीवन प्यार का नगमा है, पहले धीरे धीरे करेंगे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप गाना भी। ये एनर्जेटिक मेडिटेशन है, मूविंग मेडिटेशन है। सूफी माइथोलॉजी पे आधारित है। उसमें लीन हो जाना। सब भूल जाना, सब फाइल भूल जाना, साइलेंस में, बिल्कुल साइलेंस। अभी साइलेंस में बैठ जाएं, अब स्टिलनेस को फील करना। अर्चना बहन, इसको स्टिलनेस को फील करना। जीवन तुम्हें अभी सब तरफ से ध्यान हटा दें, सांस लें और छोड़ें, सांस को छोड़ें, सब तरफ से डिटैच हो जाएं और अपने अंदर एक एनर्जी, ऊर्जा को फ्लो करने दें। अनुभव करें परमात्म एनर्जी पूरे बॉडी में फ्लो कर रही है और पूरा शरीर स्वस्थ है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोरोनरीज ओपन है, ब्लड शुगर ठीक है, पूरा शरीर स्वस्थ है। अनुभव करें परमात्म एनर्जी पूरे शरीर को हील कर रही है। जहां प्रॉब्लम है उस एनर्जी को ले जाएं, फील करें और अनुभव करें वो ऑर्गन ठीक है। वापस एनर्जी सेंटर पर आएं, सीट पर आएं और परमात्मा को जीवन देते हुए उससे गिफ्ट ले रहा हूं, जीवन तूने दिया।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ है फिर हमको डरने की क्या बात है, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर पल तुम्हारा अगर साथ है, छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है, हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए, हम जो रूठे कभी तो मना लो कि तुम हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ आ आ, 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 आ
लास्ट थेरेपी है जो मुझे अच्छी लगती। जैसे चार्ली चैपलिन ने भी कहा था, एक दिन भी तुम्हारा ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने हंसा नहीं हो। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट आ रहा है, अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो खुद पर हंसिए, दूसरों पे ना हंसे, खुद पर हंसे, तो मैं देखूंगा कौन अच्छा हंस सकता है। एक अभी मैं सुनाऊंगा, फ्लो पे ही है, बहुत डीप फिलॉसॉफी है। फ्लो पूरा स्पिरिचुअलिटी का इसेंस है। जो फ्लो को सीख जाता है वो लाइफ को एंजॉय करता है। एक व्यक्ति है, खूब पैसा कमाया पर खर्चा नहीं करता था, इकट्ठा करता जाता था। वाइफ को बोला, जब मेरे लास्ट समय होगा, मेरे को जब कब्र में डालेंगे बॉक्स में, तो मेरा सारा पैसा बॉक्स में डाल देना। वाइफ बड़ी ओबीडियंट थी, बोला यस। लास्ट समय आया, प्रेयर हुई, बॉक्स को नीचे उतारा गया, ढक्कन बंद करने जा रहा था प्रीस्ट, तो वाइफ ने कहा रुको रुको। घर के अंदर गई, एक बॉक्स लेके आई और उस बॉक्स को डाल दिया, बोला आप बंद कर दो। वाइफ के पास उसकी फ्रेंड बैठी हुई थी, तू रियली इतना मूर्ख है कि तूने सब पैसा इसमें डाल दिया? वाइफ ने कहा, उसने कहा था सब पैसा मैं साथ में ले जाऊंगा, मेरे को अपना धर्म भी निभाना है, तो मैंने सब पैसा उसके जाने के पहले बैंक में डाल दिया था मेरे अकाउंट में, और इसमें मैंने चेक लिख के डाल दिया कैश इट। एंजॉय द फ्लो। जिस दिन आए फ्लो को एंजॉय करो, नहीं तो क्या होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूं, रियल एग्जाम्पल जिससे मैंने सीखा, मैं भी करता था ऐसा उस समय। एक बार ट्रेन में आ रहा था, सेकंड एसी कोच था, हस्बैंड वाइफ चढ़े, उसको चाय पीनी थी हस्बैंड को, स्टेशन पे उतरा पर गाड़ी चल रही तो वापस आ गया। एक चाय वाला चढ़ा डब्बे में, इसने पूछा कितने की चाय, बोला 5 रुपए की चाय। यह व्यक्ति जो एसी कोच में बैठा है उससे आर्ग्यू करता रहा 10 मिनट 15 मिनट, तो 5 रुपए की चाय क्यों दे रहा, स्टेशन पे चाय 4 रुपए की है, उनका कप इतना बड़ा है, तेरा कप इतना छोटा, और 5 रुपए। अब मैं देख रहा था 20, 10, 15 मिनट वो उसको 5 रुपए की चाय कप छोटा, 5 रुपए की चाय कप छोटा, तो मैं देख रहा था वो क्या कर रहा है, यहां एड्रिनल ग्लैंड लगी हुई है, 5 रुपए कप छोटा, एड्रिनल निकले जा रहा है। जितना ज्यादा एड्रिनल निकलेगा उतना कोरोनरी आर्टरी डैमेज होगी, कोलेस्ट्रॉल तब जाता है जब आर्टरी डैमेज हो जाए। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो बीमारी नहीं होती, पर आर्टरी डैमेज हो गई और फिर कोलेस्ट्रॉल चिपकता है, 5 रुपए एड्रिनल। अब बाद में डॉक्टर को 1.5 लाख रुपए दे देगा एंजियोप्लास्टी का, इससे अच्छा 1 रुपया दे देता बच जाता। मैंने देखा इंडियन स्ट्रेस बड़ी नहीं है, हम छोटी स्ट्रेस को बड़ा कर देते हैं, इससे अच्छा दे दो एक रुपए की। मैंने कहा क्यों देता 5 रुपए में। उसने कहा क्या करूं, डब्बे में घुसता हूं तो 3-4 तो फ्री पिलाना पड़ती है, आपको मालूम है पिलाना पड़ती है। और कब छोटा रखा है कि डॉक्टर लोग ही कहते हैं ज्यादा चाय अच्छी नहीं है तो मैं कम देता हूं। अब चाय को एंजॉय करना, तू 1 रुपए के चक्कर में क्यों जा रहा है, उसको एंजॉय कर। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम लोग वो अंत को देखते देखते खुशी को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जब मौका मिले एंजॉय करो। और कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो तो भी कर सकते हो। एक और लास्ट देता हूं, अब देखना कितना हंसते हैं आप, देखूंगा आप। लास्ट लाफ्टर थेरेपी। एक फादर अपने लड़के को बोलता है, तेरे को मेरी चॉइस की लड़की से शादी करना पड़ेगी। लड़का कहता है नहीं, मैं अपनी चॉइस से करूंगा। फादर कहता है वो बिल गेट की लड़की है। बोला अच्छा फिर करूंगा। बिल गेट के पास जाता है, कहता है मेरे पास एक यंग है लड़का, आपके लिए आपकी लड़की के लिए शादी के लिए। बोला नहीं मेरी लड़की तो अभी यंग है। तो फादर कहता है वो वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बिल गेट कहता फिर ठीक है कर लेंगे। अब वो फिर तीसरे दिन जाता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के पास, कहता है मेरे पास एक लड़का है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट कहता नहीं मेरे पास तो 4 वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी हैं। तो वो कहता है कि ये लड़का बिल गेट का दामाद है। तो प्रेसिडेंट कहता ठीक है रख लेते हैं फिर। तो कुछ जीरो होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी बिजनेस को आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली, टू योर ऑर्गेनाइजेशन।